कल श्री भरत के चरित्र पर दूसरी चर्चा करते हुए हमने देखा था कि किस प्रकार कोई भी प्रलोभन भरत जी को डिगाता नहीं और अपने पावन और दिव्य जीवन के माध्यम से वे पूर्ववासियों का चित्त अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। जो भी शंका उन लोगों के मन में रही हो कि श्री भरत के कारण ही श्री राम का वनगमन हुआ है, वह शंका अंततो गत्वा दूर हो जाती है। जिस प्रकार का व्यवहार भरत जी प्रदर्शित करते हैं, जो निर्लोभता उनके जीवन में दिखाई देती है, जो कठोरता है, त्याग है, वह सब लोगों के चित्त के संशय को निर्मूल कर देता है। और अंत में निर्णय सुनाते हुए भरत जी ने कह दिया, आपनी दारुण दीनता सब ही कहां सिर नाय, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जननिन जाय। मैं आप लोगों से यही कहता हूं कि प्रभु के श्री चरण कमलों को देखे बिना हृदय की ज्वाला बुझने वाली नहीं है। सभी पूर्ववासियों ने, मंत्रियों ने, गुरुजी ने भरत की इस बात का अनुमोदन किया है और हम पढ़ते हैं कि जाने की तैयारी होने लगी। एक दल था जिसने कहा कि जाने से पहले अयोध्या के राज्य की रक्षा का उचित प्रबंध कर देना चाहिए ताकि अनुपस्थिति में किसी प्रकार की जनधन की हानि ना हो। एक दूसरा भी दल था जो जाने के लिए बहुत ही उतावला था। इस दल के लोगों को थोड़ा सा भी विलंब सही नहीं था, वे यही कहते थे कि अभी चलें, व्यवस्था करने में तो समय लग जाएगा, हमें व्यवस्था की क्या बात है और क्या आवश्यकता है, जल जाए वह संपत्ति, मिट जाए वे बंधु, मर जाए वे माता पिता, जो श्री राम के सन्मुख होने में बाधक होते हैं। भाषा तो बड़ी कठोर मालूम होती है, जरम सो संपत्ति सदन सुखु सुहृद मातु पितु भाई, सनमुख हो तजो राम पद करैन सहस सहाय। जरौं सो संपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई, सनमुख हो तजो राम पद करेन सहसो सहाय। सब सदन जल जाए, सुख नष्ट हो जाए, सुहृद माता पिता ये सब नष्ट हो जाए, जो श्री राम के चरण कमलों के सामने उपस्थित होने में बाधक होता है वह सब नष्ट हो जाए। अब यह तो द्वंद्व की स्थिति बन गई। अब एक था रागियों का दल जो चाहता था कि यह जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा का प्रबंध करके चलना चाहिए। दूसरा था विरागियों का दल जो कहता था कि संपत्ति नष्ट हो जाए, हमें तो श्री राम के पास पहुंचना है, हमें किसी प्रकार का विलंब सही नहीं है, हम अभी चले चले, व्यवस्था के लिए हम बाट जोहते बैठे नहीं रहेंगे। भरत जी से पूछा गया कि देखिए ये दो प्रकार के लोग हैं, आप क्या कहते हैं? भरत जी ने कहा, मेरा मत तो यह है कि यहां की व्यवस्था करके चले, यहां पर रक्षक नियुक्त कर दें, जिससे संपत्ति और जन धन की सुरक्षा हो जाए। तो जो विरागी दल के थे उनको बड़ा आश्चर्य सा लगा, ये भरत जी कैसे हैं, ये तो रागियों के दल में मालूम पड़ते हैं, संपत्ति के प्रति इनको मोह लगता है, आसक्ति लगती है। इन्होंने तो प्रस्ताव रखा कि श्री राम के पास चलना चाहिए, और फिर ये कहते हैं कि नहीं, सुरक्षा का प्रबंध करके हम लोग चलेंगे। पर भरत जी का तात्पर्य क्या था? भरत जी का तात्पर्य बहुत ही भिन्न था। उनका तात्पर्य यह था कि यदि संपत्ति मेरी होती तो मैं स्वयं आग लगा करके चला जाता, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं थी। पर संपत्ति तो मेरी नहीं है, यह तो प्रभु की है, और प्रभु की संपत्ति की सुरक्षा का भार हम सब पर है। और इसीलिए भरत जी तो कहते हैं, संपत्ति सब रघुपति कह आही, जौ बिन जतन चलो तजिताई, तो परिनामन मोर भलाई, पाप सिरो मन साई दोहाई। यदि मैं ऐसी छोड़ करके चला जाऊं तो मैं पाप शिरोमणि गिना जाऊंगा, और स्वामी के प्रति द्रोही समझा जाऊंगा कि मैंने संपत्ति की रक्षा नहीं की। जैसे भाई त्यागी कौन है? अपनी संपत्ति को त्याग दे वह त्यागी है। पर मान लीजिए मैं आपकी संपत्ति में, आपके घर में पेट्रोल डाल करके आग लगा देता हूं, और बाहर खड़ा होकर के कहता हूं कि देखो मैं कितना त्यागी हूं। कैसे त्यागी हूं? देखो मैंने उसकी संपत्ति को जला दिया है, तो मैं त्यागी हूं ना अपराधी, मैं पुरस्कार का भागी बनूंगा ना दंड का भागी बनूंगा। तो यही कहना है भरत जी का, संपत्ति तो प्रभु की है, इसको छोड़कर के कैसे चले जाए? मेरी होती तब तो मैं कोई परवाह ही नहीं करता। और इसीलिए वे सारी व्यवस्था करते हैं ताकि प्रभु की संपत्ति में किसी प्रकार की क्षति ना हो, और वहां से चलेंगे। चलने के पहले एक बात और कहते हैं, क्या कहते हैं? कहे वो ले भू सब तिलक समाजू, बनहिं देव मुनि रामहि राजू। कहते हैं भाई सब तिलक का सामान लेकर के चलो, वन में मुनि भगवान श्री राम का अभिषेक करें, राज सिंहासन ले चलो, अन्य जो भी सामग्रियां अपेक्षित हैं वह सब ले चलो। लोगों को फिर से आश्चर्य हुआ, कैसे हैं भरत जी? अभी कह रहे थे कि श्री राम को लौटा लाने के लिए चले, जब लौटा लाने के लिए जा रहे हैं तो फिर यह सिंहासन कहते हैं ले चलो, यह जो सामग्री ले चलो राज्याभिषेक करने की, क्या आवश्यकता है? इसका मतलब क्या यह है कि भरत जी के मन में श्री राम को लौटा लाने की इच्छा नहीं है? स्वाभाविक था, जिन लोगों के मन में यह शंका उठी दोष नहीं दिया जा सकता था, वे भला श्री भरत की भावना को पकड़ कैसे सकते थे? उनको तो यही लगा कि जब श्री राम को लौटा लाने के लिए ही जाना है तो फिर क्यों कहते हैं कि राज सिंहासन ले चलो, सामग्री सब ले चलो, वहां पर मुनि अभिषेक करेंगे वन में, यह तो विचित्र बात है। पर भरत जी का संकेत बहुत दूर है, वे क्या कहते हैं? हमारे प्रभु तो पूर्ण है, उनको किसी बात की आकांक्षा नहीं, उनको तो धर्म की आड़ में राज्य से निकाला दे दिया गया, परंतु फिर भी उनके मन में किसी प्रकार का मोह नहीं, संपत्ति के लिए मोह नहीं, राज्य के लिए मोह नहीं, तो उनके लिए किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ता कि वे राज्य सिंहासन पर बैठते हैं या नहीं। अब भरत जी का तर्क यह है कि राज्य सिंहासन पर बैठ करके बड़े होने वाले लोग तो बहुत हैं, एक सामान्य व्यक्ति भी है, अगर उसे राजा की गद्दी मिल जाए तो कितना बड़ा हो जाता है। एक सड़क पर चलने वाला आदमी वोट जीत करके मंत्री पद पर अभिषिक्त हो जाता है, आप जिससे बातें नहीं करना चाहते, ऐसा व्यक्ति जब मंत्री पद पर आसीन हो जाता है वो तो गया, सिंहासन पर बैठ करके बड़े होने वाले लोग तो आज बहुत देखे जाते हैं। पर भरत का तर्क यह है कि हमारे प्रभु को तो सिंहासन की अभिलाषा नहीं, पर सिंहासन यदि धन्य होना चाहता है, यदि वह चाहता है कि श्री राम मुझ पर बैठ करके मुझे धन्य करें, तब तो राज सिंहासन चल करके उन तक जाए। यह भरत की इच्छा है, उनकी भावना है, प्रभु को सिंहासन की आवश्यकता नहीं। यदि सिंहासन को प्रभु की आवश्यकता है तो वह चले, वह क्यों जाए? जिसको सिंहासन की आवश्यकता होती है वह भले सिंहासन तक जाए, पर जिसको आवश्यकता ही नहीं तो सिंहासन के लिए उचित है कि वही चलकर के प्रभु तक जाएगा। अद्भुत और विलक्षण भाव है। और देख रहे हैं मुनि वशिष्ठ, उनके हृदय में भरत के लिए एक अगाध स्नेह और साथ ही साथ भरत के प्रति श्रद्धा का भाव बढ़ता है। अभी तक वशिष्ठ जी के मन के किसी कोने में भरत जी के प्रति उतना सद्भाव नहीं था, शायद उन्हें भी ऐसा ही लगता था कि भरत जी तो श्री राम से दूर दूर रहते हैं, ननिहाल में इतने वर्षों तक जाकर के बस गए, उनके मन में भी कहीं पर शायद संदेह की क्षीण रेखा है। परंतु श्री भरत अपने उदात्त चरित्र के माध्यम से किस प्रकार परिवर्तित कर रहे हैं गुरु वशिष्ठ के हृदय को, यह अपने आप में दर्शनीय है। और जिस समय मुनि वशिष्ठ ने देखा श्री भरत की भावना को, परखा और समझा, तो वे तो गदगद हो जाते हैं। और जिस समय सचमुच प्रभु लौट करके आ गए लंका से, जब उनका अभिषेक होना है, तो मुनि ने भरत जी की भावना का ख्याल रखते हुए पूरी तरह से उसकी सुरक्षा की। जैसे प्रभु लौट आए, अब उनका अभिषेक किया जाएगा, तो पहले वे क्या करते हैं, तीनों भाइयों की जटा पहले साफ करते हैं, खोलते हैं, उनको स्नान कराते हैं। यह विलक्षण बात, कितने वहां पर सेवक हैं, पर प्रभु कहते हैं कि नहीं। अब जब भरत ने एक प्रकार से आपत्ति की तो प्रभु ने कहा कि भरत तुम लोग मुझे राजा मानते हो ना? भरत ने कहा कि आप तो हैं, तो जब तुम मुझे राजा मानते हो तो राजा की आज्ञा का पालन करो। आज्ञा का पालन क्या है? कि ठीक है, मैं ही तुम लोगों की जटा सुलझाऊंगा, स्नान कराऊंगा। अनवाय प्रभु तीनी उभाई, प्रभु ने सबसे पहले तीनों भाइयों को स्नान कराया। कितने वर्षों की जटा तो उनकी भी थी। और जिस समय भरत इत्यादि प्रभु को नहलाने के लिए आए, प्रभु ने मना कर दिया, नहीं यह कार्य तुम लोगों को नहीं करना है, यह राजा देश है, यह तो मैं ही करूंगा। निज कर जटा राम निरुवारे, अपनी जटा उन्होंने अपने हाथ से सुलझाई। और जिस समय प्रभु स्नान कर लेते हैं और राज्याभिषेक के लायक वस्त्राभूषण धारण कर लेते हैं, तब लिखते हैं गोस्वामी जी, जिस समय मुनि वशिष्ठ ने देखा प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरत देव्य सिंहासन मांगा। जिस समय देखा कि प्रभु तैयार हो गए हैं, तो मुनि ने तुरंत दिव्य सिंहासन को मंगाया। ये जो मंगाने की बात है, इसका तात्पर्य यही है, सामान्यतः जिसका राज्याभिषेक होता है वह तो चल करके जाता है, तैयार हो गया, जहां पर सिंहासन रखा हुआ है वहां पर वह जाएगा, बैठेगा, उसका अभिषेक किया जाएगा। पर मुनि ने भरत की भावना का ख्याल करते हुए यह व्यवस्था की कि वहीं पर जहां पर प्रभु थे सिंहासन को मंगवा लिया। और ठीक वही भावना कि सिंहासन यदि स्वयं धन्य होना चाहता है तो फिर इस सिंहासन को चल करके जाना पड़ेगा, प्रभु तक जाना पड़ेगा। जैसा कि श्री भरत का भाव था उसकी पूरी रक्षा गुरु जी करते हैं, तो यह भाव क्रांति है। और यह भाव क्रांति एक ओर गुरु जी के मानस में पैदा हो रही है श्री भरत के द्वारा, और दूसरी भाव क्रांति हमें दिखाई देती है, और वह तो बड़ी विलक्षण भाव क्रांति है। मैं तो समझता हूं इस भाव क्रांति के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक देखने का हमें नया आयाम दिया है, और वह भाव क्रांति आती है कहां, गुरु को लेकर, निषाद को लेकर के। निषाद शूद्र है जिसके संबंध में कहा गया है जासु छाह छू ले ये सींचा, जिसकी छाया को छू लेने से स्नान करके शुद्ध होना पड़ता है, ऐसे निषाद को भरत अपने हृदय से लगाते हैं। गुरुजी तो दूर से आशीर्वाद देते हैं, भरत अपने हृदय से लगाते हैं। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। और मैं तो यह मानता हूं कि रामचरित मानस के माध्यम से जो भाव क्रांति हुई है उस भाव क्रांति का सबसे प्रमुख और मजबूत स्तंभ यह प्रसंग है, जहां पर यह दिखाया गया है कि किस प्रकार श्री भरत अपने चरित्र और व्यवहार के माध्यम से गुरु वशिष्ठ के जीवन में भी यह भाव क्रांति लाते हैं। जैसे लौटाने के लिए चले श्री राम को, माताएं चले, गुरुजी साथ में है, सारी सेनाएं हैं, सेनापति हैं, सचिव हैं, पुरवासी हैं। देखा निषाद ने, समाचार लाया गया निषाद राज के पास कि श्री भरत तो चतुरंगनी सेना लेकर के आ रहे हैं, और हमने इस प्रकार की सूचना प्राप्त की है कि वे चित्रकूट जाना चाहते हैं। चित्रकूट और चतुरंगिनी सेना का क्या काम, मन में विचार करते हैं निषाद राज। कारण कवन भरत बन जाही है कछ कपट भाव मन माही, जो पे जियन होती कुटिलाई कतनीन संग कटुकाई। यदि भीतर में कुचलाई नहीं होती तो फिर साथ में इतनी बड़ी सेना क्यों लेकर के जाते। श्री भरत जी, जान ही सानुज राम ही मारी करूं अकंटक राज सुखारी। क्या यही भावना है कि सानुज राम का वध करके अकंटक निष्कंटक में अयोध्या का राज्य में पाऊं, गुह के रहते ऐसा नहीं होने का है। निषाद राज को निश्चय करते हैं, अस विचारी गुह संगी सब, कहते हैं कहे सजग सब हो हथवासी हूं बोधी हूं तरनी। कह रहे हैं सब जितनी भी तरनियां हैं, नौकाएं हैं, हथिया लो और सबको अभी पानी में डुबा करके रखो, हथवासी हूं बोधी हूं तरनी। और फिर उसके बाद कहते हैं कि चारों तरफ से जाकर के तुम लोग नाकाबंदी कर लो, सब रोक लो, आवागमन के सारे रोक लो। हम देखेंगे कि कैसे भरत यहां पर नदी को पार करते हैं, हम नहीं करने देंगे, मिट जाएंगे, पर प्रभु का किसी प्रकार का यह नुकसान कर पाए, क्षति कर पाए, यह हम नहीं होने देंगे। और फिर तुलसीदास जी लिखते हैं अपनी अपूर्व शैली में, इतना कह छींक भई बाई, किसी ने बाई और छींक दिया। बूढ़े ने कहा कि देखो विचार करो, यह तो ऐसी बात है, ऐसा भी तो हो सकता है कि भरत दूसरे प्रयोजन से जा रहे हैं। तो विचार करके उन्होंने ठीक किया कि ठीक है, दूसरा प्रयोजन भी हो सकता है, पहले मिल करके तो देख लें, अभी से इस प्रकार करने से क्या लग। अस कहीं भेंट सजो वन लागे कंद मूल फल खग मृग मांगे, नीन पीन पाचीन पुराने भरी भरी भार कहार निहाने। अब सब इकट्ठा कर रहे हैं कंद मूल फल खग मृग, खग माने पक्षी, मृग आप जानते ही हैं, नील मछली, तीन पाचीन मोटे बकरे। कुछ लोगों ने संशय किया कि ये सब क्या खाते हैं, खाते रहे होंगे, तभी तो ले जा रहे हैं, पुरवासी आ रहे हैं, बहुत प्रकार के वहां पर सेनापति हैं, योद्धा हैं, तो वस्तुतः यह सब भेंट करेंगे, उनको ले जाएंगे, यह सब कर रहे हैं। और फिर भाव क्रांति का देखिए चरण कैसे होता है कि जैसे आए, देखा निषाद राज ने, दूर से गुरु को देखा और गुरु को देख करके देखी दूरी ते कहि निज नाम कीन्ह मुनि सनि दंड प्रणाम। दूर से देखा और अपना नाम लेकर के निषाद राज ने कहा कि मैं अमुक आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, और कीन्ह दूरी ते कहि निज नाम कीन्ह मुनि सनि दंड प्रणाम, दंड प्रणाम किया और जानि राम प्रिय दीन ही असीसा। राम प्रिय जान करके मुनि ने दूर से आशीर्वाद दिया, दूर से ही दिया, जानि राम प्रिय दीन ही असीसा। और फिर कहीं भरत ही कहीं यह बुझाई मुनीसा, भरत को समझाते हुए कहने लगे कि ये कौन है, तो पहले ही बताते हैं कि ये राम सखा है, राम सखा सुन। परिचय की परंपरा तो ये होती है कि पहले तो नाम बताएं किसका नाम यह है, फिर कह दें कि ये अमुक अमुक यहाँ के राजा हैं या यहाँ के जमींदार हैं, और फिर यह कह सकते थे कि श्री राम के सखा हैं। परंतु गुरु वशिष्ठ ने सोचा कि यहाँ पर जब भरत जी को परिचय प्रदान करना है तो राम सखा कहना ही सबसे उत्तम परिचय होगा, तो कहते राम सखा। अब भरत को और किसी परिचय की आवश्यकता नहीं थी, तो लिखते हैं गोस्वामी जी, राम सखा सुनि संदन त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा, गाँव जाति गुहनाम सुनाई, इन जोहार माथ मही लाई। कहा कि राम सखा, राम सखा सुनते ही भरत जी रथ से उतर गए। अभी तक तो यही देखा जाता था कि स्वामी रथ पर रहे, सेवक नीचे रहे, पर राम सखा सुनते ही वे रथ का परित्याग कर देते हैं, नीचे उतर आते हैं, चले उतर उमगत अनुराग। इतना अनुराग भरत जी के हृदय में है, राम सखा कहने से राम का उद्रेक होता है, बड़ी विलक्षण बात है। जैसे हम पढ़ते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जीवन में, चैतन्य महाप्रभु के जीवन में आता है कि जब वे जा रहे थे संगियों के साथ किसी गांव में से होकर के, तो किसी ने कहा कि महाप्रभु यहां की मिट्टी से खोल तैयार होता है, और बस महाप्रभु तो समाधि में मग्न हो गए। खोल तैयार होता है, खोल जो भगवान के कीर्तन के समय बजाया जाता है, तो खोल भगवान के कीर्तन का संगी है, तो कहां से कहां उद्दीपना, हम लोगों की कहां से कहां उद्दीपना, हम लोगों की उद्दीपना उल्टी चलती है। हमें संसार का बोध होता है, उन्हें भगवान का बोध होता है, तो कोई भी वस्तु आई वह वस्तु उन्हें भगवान का बोध कराती है। जैसे श्री रामकृष्ण देव के जीवन में बड़ी विलक्षण घटना आती है, उस समय यहां पर चिड़िया खाना बना था, एक सिंह लाया गया था, तो सिंह को देखने के लिए बहुत से लोग तब जा रहे थे। किसी ने कहा श्री रामकृष्ण देव से, महाराज सिंह देखने चलेंगे? हाँ रे जरूर चलेंगे, वह तो माता का वाहन है, बस दुर्गा माँ का वाहन है, मैं दुर्गा माँ का वाहन देखूंगा। छोटे से बालक के समान चंचल हो गए, कब चलोगे? कहा महाराज 3 बजे चलेंगे। तो बार बार पूछते हैं, अभी तो 10 ही बजे हैं, 3 बज गए? तो महाराज अभी तो 10:30 बजे हैं, अभी 11 कब बजे, 11:30 कब बजे, 12 कब बजे, मानो छटपटा रहे हैं। कितनी बार पूछा कि 3 बज गए, ठीक है चले आए। और छोटे से बच्चे के समान चंचल होकर के पूछते हैं, कैसा है सिंह देखने में, जैसा चित्र में है क्या वैसा ही दिखाई देता है? क्योंकि उन्होंने सिंह नहीं देखा है, केवल चित्र देखा है, जानते हैं कि यह जगदम्बा दुर्गा का वाहन है, तो मैं वह देखूंगा। और आए चिड़िया खाना में बंदरों का पिंजरा, और वे आतुर होकर के पूछते हैं कहां पर है सिंह का पिंजरा। कहते महाराज बस आ ही गए। और जब भक्तों ने कहा महाराज अगले पिंजरे में सिंह है, सिंह है, इतनी उद्दीपना हो गई गरी समाधि में चले, समाधि उतरी ही नहीं, सिंह देखना हुआ ही नहीं, लौटा करके ले आना हुआ। यह क्या है कि सिंह, सिंह से माता का बोध, दुर्गा जिसका कि यह सिंह वाहन है, और वह जो भीतर में ईश्वर का आवेश। तो यहां पर भी भरत ने जिस समय सुना कि राम सखा है, तो राम सखा सुनते ही राम का बोध उतर पड़े, किसी प्रकार का भेद नहीं, और चले। और वहां पर तीन जो हार माथ महिलाई, उसने तो सिर टिका करके नीचे जमीन पर प्रणाम किया भरत जी को। और भरत जी देखते हैं दे, जहां पर उन्होंने देखा कि यह जो निषाद है वह दंडवत कर रहा है। करत दंडवत देखी ते भरत लीन उरलाय, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेमुन हृदय समाय। करत दंडवत देखी ते भरत लीन उरलाय, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेमुन हृदय समाय। जो कभी नहीं देखा गया हृदय में ले लिया। मुनि वशिष्ठ भी दूर खड़े अचरज से देख रहे हैं, यह क्या हो गया, यह कैसी परंपरा हो गई, ऐसा तो नहीं होता है। गोस्वामी जी लिखते हैं लोक वेद सब भांति नीचा, जासु छां छुइले सींचा, तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। ऐसा जो यह नीच है, अत्यंत लोक में प्रसिद्ध नीच है, वेद में प्रसिद्ध नीच है, जिसकी छां को छू लेने से स्नान करके शुद्ध होना पड़ता है, तो ऐसे इस निपट नीच को राम के लघु भ्राता अपने हृदय से लगा लेते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि मानो लखन से भेंट हो गई है। यह विलक्षण प्रेम है। अब कई धर्म धुरंधर लोग तो होते हैं जो कहते हैं कि वह तो अछूत है, अस्पृश्य है, आप इस भावना से अपरिचित नहीं हैं। अब ये लोग यह कहते हैं ठीक है, क्योंकि श्री राम ने भी तो आप जानते हैं कि निषाद को हृदय से लगाया था, लगाया था यहीं पर, लगाया था पहले भी लगाया था। मिलिस प्रेम रिपुसूद नहीं के मिलिस केवट भेंटे राम। यह भेंटना, भेंटना माने हृदय से लगाना, जो भेंट कहते हैं मानो हृदय से लगाने को भेंट कहते हैं। तो रिपुसूदन से मिलने के बाद, शत्रुघ्न से मिलने के बाद श्री राम हृदय से लगा लेते हैं केवट को। तो कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है, भरत जी ने श्री राम ने हृदय से लगा लिया, फिर बाद में उन्होंने स्नान कर लिया होगा और शुद्ध हो गए होंगे। अब इनकी बुद्धि को क्या कहना है, यह बहुत विचित्र बात, यह भाव क्रांति। तुलसी के लिए कहा जाता है ना, कहीं पर उन्होंने लिख दिया, अब समुद्र के मुंह से एक बात निकल गई कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी है सब तारण के अधिकारी, और जितने भी तुलसी को डंडा मारते हैं इसी एक वाक्य को पकड़ करके मारते हैं, पर समझने की चेष्टा नहीं करते कि तुलसी की भावक्रांति कहां पर है। यह जो गोस्वामी जी हैं समाज को क्या देना चाहते हैं, यह जो छूने का भाव है, यह आज तक कितने विकट रूप में विद्यमान है, और इसकी हमारे समाज में कितनी प्रतिक्रिया हो रही है, यह आपकी आंखों से ओझल नहीं है। यह बहुत बड़ी समस्या है हिंदू धर्म के लिए, हिंदू समाज के लिए। और यह समस्या तो तब भी थी, स्वामी विवेकानंद के युग में थी। स्वामी विवेकानंद ने उस पर कितना कठिन प्रहार किया था, जब वे जा रहे थे परिव्रजन करते हुए दक्षिण की ओर, मलाबार से वे गुजर रहे थे, तो वहां पर उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। यह देखा एक कोई व्यक्ति है सड़क पर चला जा रहा है और चिल्ला रहा है, भाषा तो वे जानते नहीं थे, समझ नहीं पाए कि वह व्यक्ति कौन है, हाथ में कोई फेरी दिखाई नहीं देती थी, तो उन्होंने देखा कि फेरी वाला भी नहीं है, कोई चीज होती अपनी चीज बेचने के लिए कोई फेरी लगाता तो भी बात समझ में आती, पर यहां पर तो कोई नहीं, उसके हाथ में कुछ नहीं और फिर भी वह चिल्लाता हुआ चला जा रहा है। एक अंग्रेजी जानकार व्यक्ति से पूछा, यह कौन है, यह क्या कहता हुआ जा रहा है, अकेले इस तरह चिल्ला क्यों रहा है? अंग्रेजी जानकार व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी आप जानते नहीं, यह परिया है, यह अछूत है। तो अछूत है तो इस प्रकार सड़क पर से चिल्लाएगा क्यों? कहा तब आपको क्या यह नियम नहीं मालूम, यह यहां का नियम है कि जब भी कोई अछूत जब भी कोई परिया सड़क पर से जाएगा तो चिल्लाते हुए जाएगा, ताकि जो ऊंचे वर्ण के लोग हैं वे जान जाए कि सड़क से कोई अछूत जा रहा है। स्वामी जी तो अचरज से गड़ गए, उन्होंने ऐसा तो और कहीं देखा नहीं था।